ओम शांति। संगम युग है सब सफल करने का, तन मन धन वचन कर्म, जितना हम सफल करेंगे सफलता को पाएंगे और उससे हमारा भविष्य ऊंच बनेगा। तन की सेवा तो बहुत सहज है, बचपन से ही सब जानते हैं, खाना कैसे पकाना, सफाई कैसे करनी, बर्तन कैसे साफ करना, धुलाई कैसे करनी, बगीचा कैसे साफ करना, और कईयों को गार्डनिंग का भी शौक होता है तो वो भी सब जानते हैं, क्योंकि कई है गरीब है, कहते हैं हमारे पास धन नहीं है। धन नहीं है, तन तो है, और सेंटर पर सेवा नहीं कर सकते हैं। परिवार बड़ा है तो क्या कर सकते हैं, घर में भी जो सेवा करो ऐसे समझो ये बाबा का घर है। मेरा घर करके सेवा करेंगे तो वो कर्मयोग में नहीं गिना जाएगा, पर ये बाबा का घर है, बाबा घर के सफाई करते, ये बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए खाना पकाते हो तो क्या होगा, वो भी एक कर्मयोग हो जाता है। क्योंकि कई बार खास मैंने विदेश में देखा है, माताएं कहती सारा समय हमको ही खाना पकाना, सारा समय हमको ही सफाई करनी है। तो जब ये बुद्धि में आ जाता है कि बाबा की याद में यदि हम करते हैं तो खाना भी अच्छा पकता है, खुद भी खुश रहते हैं औरों को भी खुश कर सकते हैं, और विदेश में तो क्या होता है, नौकर चाकर नहीं है तो जो वे ब्राह्मण आते हैं वो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हम रोज पौधों को पानी देंगे या सेंटर पर फ्लावर अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि वहाँ प्लास्टिक फ्लावर पसंद नहीं करते, नेचुरल फ्लावर, रोज नेचुरल फ्लावर तो उसकी अरेंजमेंट करनी होती है। कचरा भी घर से बाहर निकालना होता है तो वो भी सेवा करते हैं। तो इस रीति से तन से तो सेवा कर सकते हैं, और बाबा कहते हैं जितनी हड्डियां बाबा की सेवा में देंगे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और शरीर खूबसूरत मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी। वहां ब्यूटी के साधन सत्युग में हमें नहीं अपनाने पड़ेंगे। तो ये सेवा तो सब कर सकते हैं। फिर आती है धन की सेवा। धन की सेवा बाबा हमेशा कहते हैं और दादी भी कहती थी, जितनी आमदनी होती है उसका 10% 15% पहले बाबा को। भक्ति में भी ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, हर एक बच्चे को पैसा देते थे, 1 रुपया भंडारी में डालो, बचपन से ही संस्कार डाला कि बाबा के बॉक्स में जरूर डालना है। कई कहते हैं हमारा बड़ा परिवार है, अच्छा 5 बच्चा है, 6ठा बच्चा हुआ तो क्या करेंगे, उसकी भी पालना करनी पड़ेगी। तो बाबा को अपना पहला बच्चा बनाकर उसकी पालना करनी। जब शुरू में मैं ज्ञान में आई तो मेडिकल पास कर ली थी, नौकरी करती थी, और 62 में इंडिया चाइना की वॉर चल रही थी, तो हम जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते थे उनको कहा गया कि आपका जितना इनकम है उसमें से जो भी आप परसेंटेज डालना चाहते हो वो नेशनल डिफेंस फंड में डालो। तो मैं क्या करती थी, पिताजी संपन्न थे और इंडिया में कोई बेटी का धन यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं 90% मेरी इनकम नेशनल डिफेंस फंड में डालती थी। जब ज्ञान मिला तो मैंने कहा अब इतना नेशनल डिफेंस फंड में क्यों डाले, तो 80% यज्ञ में, 10% डिफेंस फंड में और 10% अपने पास रखती थी। विदेश में भी कईयों को वर्षे में प्रॉपर्टी मिलती है तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मिलती है प्रॉपर्टी मिलती है फिर दादी जानकी से राय लेते थे, दादी क्या करे। दादी कहती थी प्रॉपर्टी मिलती है, वर्षा मिलता है या प्रॉपर्टी सेल करते हैं, 1/3 बाबा को दो, 1/3 अपने लिए रखो, 1/3 अपने सेंटर या कंट्री के लिए दो। तो विदेशियों ने तो कईयों ने अपनी प्रॉपर्टी बाबा को दे दी और बाबा दादी उनको 1 कमरा दे देती थी, शक्ति भवन में या सेंटर में या रिट्रीट सेंटर में उनको 1 कमरा दे देती थी। तो ऐसे वहां कई सेंटर्स बाबा के बच्चों ने अपनी प्रॉपर्टी से बनवाए। जब मैं 60s में, लेट 60s में सेंटर शुरू किया, हमारे पास एक बांधेली माता आती थी, वो बांधेली माता का पति, मैं समझती इतना कंजूस या चालाक था, उसको हाथ में 1 भी पैसा नहीं देता था। तो माता क्या करती थी, उन दिनों में लेट 60s में राशन सस्ते भाव से मिलता था और उसको बेचने से ब्लैक में डबल तीन भाव मिल जाता था। तो वो क्या करती थी, जितना राशन घर में चाहिए था यूज करती थी, बाकी बेच के यज्ञ में डालती थी। और कई देशों में गरीब माताएं क्या करती है, बम्बई में भी मुझे मालूम है विशेष कि अपनी भी कमाई करती थी और बाबा के बॉक्स में भी डालती थी। तो क्या पापड़ बनाना है, ब्रेड बनाना है, चिवड़ा गाठिया ऐसा ऐसा बना के ब्राह्मणों को बेचती थी ताकि ब्राह्मणों को भी शुद्ध अन्न मिले और खुद की भी सेवा हो और बाबा के भी भंडारे में डाल सके। उन दिनों में लेट 60s में प्रकाशमणि दादी गामदेवी संभालती थी, वहां एक भाई आता था 100 रुपया कमाता था महीने का और 10 रुपया बाबा के बॉक्स में डालता था। दादी ने कहा, तुम 90 रुपये में कैसे चलाते हो? कहता है, ज्ञान के पहले मैं बीड़ी पीता था, तो अभी बीड़ी तो छूट गई, तो वो 10 रुपया जो बीड़ी में जाता था अब यज्ञ में। तो इसी रीत से जिसको धन से सेवा करनी होती है वो कैसे न कैसे युक्ति निकाल सेवा करते थे। कई माताएं थे, गरीब थी, तो सिलाई करके, कपड़े सिलाई करके भी कमाई करके बाबा के भंडारे में डाले। क्लास में आने के लिए रोज टिकट का खर्चा नहीं करती थी, पर बाबा के बॉक्स में जरूर डालती थी। तो धन से और धन से सेवा, वो तो हमने समझा, अभी मन से सेवा। मनसा सेवा सब कर सकते, चाहे गरीब है, मानदेले है, बड़ी आयु के है, चाहे बीमार है, सेवा कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मनसा पावरफुल होनी चाहिए और करुणा भाव, दया भाव हर एक के लिए हो। जैसे वर्ल्ड मेडिटेशन आवर में हम क्या करते हैं, 1 घंटा योग करके विश्व को शांति का दान देते हैं। तो इसी रीत से विश्व को शांति का दान देना, सवेरे अमृत ले अपना समय अपने लिए रखो, अपनी स्थिति बनाने के लिए, पर शाम को योगदान दो। मम्मा क्या करती थी, उनका नियम था जल्दी उठना और जल्दी उठ के योगदान देती थी, क्योंकि मम्मा बाबा के पास तो समाचार आते रहते थे, कई बांधेली माताओं के ये वो जो कुमारियों के उन दिनों में तो कुमारियों को भी बहुत बंधन रहता था, अभी भी है पर अभी थोड़ा है, फिर भी कुमारी पढ़ी लिखी है, कमाती है तो इतना पेरेंट्स फोर्स नहीं करते शादी करो। तो मम्मा उनों को योगदान देती, और जानकी दादी के पास भी कई पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते थे, कई बार दादी फौरन जवाब दे देती थी और कई बार फिर दादी कहती थी ठीक है कल मैं आपको अमृत वेले मिलके बताती हूँ क्या करना है। तो बाबा से हम शक्ति कभी भी भर सकते हैं, बाबा की याद द्वारा हम कभी भी किसी को भी योग का दान देते हैं। क्या है, दूर देश में यदि हमारे मित्र संबंधी हैं विजिट नहीं कर सकते, कम से कम उनको योगदान दे सकते हैं, फोन में आश्वासन दे सकते हैं, और हमें ये याद रखना है कि हम वृक्ष के रूट में हैं, तो हमें सारे वृक्ष को पानी पहुंचाना है, शक्ति भेजनी है। तो स्व का तो कल्याण करना ही है, परंतु औरों को भी उठाने के लिए योगदान करना है। शुरू शुरू में कई कुमारियां माताएं बांधेली जो थी वो क्या करती थी, पति को या पिता को या माँ को जो भी बंधन डालने वाले थे उन्हों को योगदान देती थी, वो सॉफ्ट हो जाते थे धीरे धीरे। तो मनसा सेवा स्व की करनी है, तो जो भी कार्य हम करें प्यार से करें, बाबा की याद में करें। जीवन में मूल्य धारण करने हैं और आत्मविश्वास रखना है, हिम्मत रखनी है। तो जितना बाबा के याद में रहेंगे, हिम्मत शक्ति समानता समान सब बढ़ता जाएगा। और अपने जीवन में लक्ष्य रखना है और अपना नियम बनाना है उस मूल्य पर चलने के लिए। मनसा सेवा दूसरों की भी कर सकते हैं, जितना औरों के लिए हम प्रेम भाव से उनकी संभाल करेंगे, क्योंकि आसपास कई बीमार होते हैं, घर वाले हैं, लौकिक है, अलौकिक है। प्यार से सेवा करो। और ये याद रखना है, हम दाता, हर एक के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रखनी है। रहन दिल बनना है। सेवा जो करो वो नाम मान शान के लिए नहीं, परंतु ये आत्माएं बाबा के बच्चे कितने दुखी है, उनको हमें मदद करनी है। और ये ना समझो कि हम इनके ऊपर उपकार करते हैं, नहीं तो उनको फील होगा बिचारी मेरे लिए मदद करती है, इतना सहन करती है। नहीं, तो हमारी जितनी स्थिति ऊंची होंगी उतनी सेवा भी ऊंची होंगी। और तीसरी है विश्व सेवा। जितना हमारा बाबा से बुद्धि योग होगा, तो क्या होगा कि ये नहीं समझेंगे कि मैं करती हूं, परंतु बाबा क्या कराता है मेरे से, ड्रामा क्या कराता है, मैं पन छूट जाना चाहिए। तो हमें बाबा के साथी बनकर सेवा करनी है। और जितनी साइलेंस की शक्ति बढ़ाएंगे इतनी हमारी अवस्था अचल अडोल रहेंगे। परिस्थिति आएंगे, कर्म भोग भी भोगना पड़ेगा, क्यों कि 63 जन्म पाप कर्म किए हैं, लास्ट जन्म में चुकतु करना है, तो इसलिए कर्म भोग भी बाबा कहते हैं खुशी खुशी से भोगो कि चलो हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। और फरिश्ता स्वरूप बनकर सेवा करो। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर भी सेवा कर सकता है। कईयों को फरिश्ते का साक्षात्कार होता है, कईयों को ये समझ में आता है कि इस परिस्थिति में मुझे फरिश्ते ने मदद की। मिसाल के तौर पर एक 6 की बच्ची माँ के साथ जा रही थी, उसका ध्यान नहीं था, वहाँ वो स्विच का ढक्कन नहीं था और वो भी गिर गई। 1 का फर्क रहा, नहीं तो अंदर जाती थी गिरती थी। तो उसने देखा वो फरिश्ता उसको मदद करता, अंदर नहीं जाने दिया। और ये भी अनुभव किया है कईयों ने कि एक माँ मर गई, छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्या कहती थी उसकी आत्मा, रोज रात को आकर जो वॉश बेसिन में रात के बर्तन गंदे होते थे, सवेरे तक सफाई होकर ठीक हो जाते थे। तो मेन वस्तु ये है, पवित्रता जितनी होगी उतना योग होगा, जितना योग होगा हमारी स्थिति ऊंची होगी और हम अपनी औरों की, सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। और लक्ष्य रखना, लिमिट में नहीं रहना, सारे विश्व की सेवा करनी। अभी मम्मा के बारे में हमारा भाग्य था मम्मा को पहले दिन ही मिलना हुआ। उन दिनों में मम्मा मुंबई 9 मास के लिए रही थी और मैं वो अक्टूबर में आई और मैं दिसंबर में ज्ञान में आई और हर संडे शाम को वाटरलू मेंशन में मम्मा का पब्लिक प्रोग्राम था, प्रवचन था, तो ब्राह्मण अपने मित्र संबंधी को सेंटर पर बुलाते थे, मम्मा का प्रवचन सुनते थे और फिर उन्हों को प्रेरणा देते थे कि कोर्स करो। तो मेरी फ्रेंड उषा थी जो यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ती थी, जब उसको विश्वास हुआ और मम्मा बम्बई में थी, उसने हमें निमंत्रण दिया कि शुक्रवार या शनिवार फोन किया, संडे शाम को आप क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं फ्री हूँ, तो कहो, कहा कि वाटरलू मेंशन में आ जाना, मम्मा का प्रवचन सुनना। तो उन दिनों में मैं हॉस्पिटल में काम करती थी और रोज शाम को 2 घंटा हमको फ्री मिलता था। मैटरनिटी होम था तो सवेरे छुट्टी नहीं मिलती थी, सिर्फ शाम को। और संडे को छुट्टी मिलती थी तो मैं शाम को दूसरे दिन से कोर्स शुरू कर दिया। जब प्रवचन पूरा हुआ, उषा ने बांधा कोर्स करो, मैंने कहा ठीक है। और उन दिनों में पटना से कुंज दादी आई थी बम्बई। बाबा क्या करते थे, जब मम्मा बाबा बम्बई होते थे तो सब सीनियर दादियों को बुलाता, आओ बम्बई भी देखो और रिफ्रेश भी होके जाओ मम्मा बाबा से मिलके। उन्होंने हमें कोर्स कराया, 7 दिन पूरा हुआ तो उषा ने मम्मा से इंट्रोड्यूस कराया कि मम्मा ये मेरी फ्रेंड है, डॉक्टर है ये है। फिर मम्मा ने पूछा सब ठीक है, सब समझ में आता है। मैंने पहले तो कहा कि मेरी टीचर जा रही है मम्मा, क्योंकि कुंज बहन को जाना था वहाँ वापस पटना। मम्मा ने कहा कोई बात, निर्मल शांता तुम्हारी पालना करेंगे। फिर मैंने कहा कि क्राइस्ट का पहला जन्म था, सतोप्रधान था। कृष्ण का पहला जन्म भी सतोप्रधान था, तो दोनों में अंतर क्या? फिर मम्मा ने समझाया कि क्राइस्ट की जो सतोप्रधानता थी वो द्वापर से, जन्म से नहीं था, पर कृष्ण जन्म से सतोप्रधान प्योर था। फिर 3-4 मास के बाद उषा ने अपने घर में मम्मा के साथ भोजन के लिए बुलाया, तो मैं गई। तभी तक मेरा एकदम पूरा निश्चय नहीं था कि शिव बाबा भगवान है, वो तो ठीक है मान लिया, पर ब्रह्मा के तन में आते हैं कैसे बात? दूसरा, 5000 वर्ष का कल्प हूबहू रिपीट होता है, वो कैसे माने? फिर तो उषा ने यज्ञ की स्टोरीज वगैरह बताकर बताया कैसे कैसे यज्ञ में चमत्कार हुए, फिर मेरा विश्वास हो गया। परंतु उस आधे विश्वास से भी मैंने मम्मा को कहा, मम्मा मैं नहीं चाहती हूं कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, मेरा विचार है बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा ने कहा, नहीं, तुम जब ब्रह्मा बाबा से मिलो तो प्रश्न पूछना। तो मम्मा की जो दो पॉइंट्स थी हमें बहुत अच्छी लगती थी। मम्मा हमेशा सरल मिसाल देकर हमें धारणा कराती थी। किसी की खराब आदत या अवगुण देखो नहीं, तो उसके लिए मम्मा कहती थी, देखो किसी को उल्टी होती है क्या करेंगे, घर के बीच में तो नहीं करेंगे, सीधा भागेंगे बाथरूम में, वॉश बेसिन में या फ्लश कर लेंगे। रास्ते में यदि ख्याल आया तो एक किनारे जाकर करेंगे, यदि रास्ते के बीच में करेंगे तो क्या होगा, आने जाने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा और फिर मक्खी बैठेंगी उसके उल्टी पर, वो मक्खी जाकर किसी के खाने पर बैठेंगी, क्या होगा, वो दूसरा व्यक्ति भी बीमार हो। तो इसलिए आपने जो उल्टे की ना, यस यस ये क्या वो क्या वो क्या ऐसा है वैसा है, तो क्या करेंगे, दूसरे के मन को भी बीमार कर देंगे, उसका भी जैसे उसके प्रति खराब ओपिनियन हो जाएगा। आपको बात करनी है बड़ों से करो, जैसे बीमार है ना, डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज होगा, तो आपको सीनियर से बात करनी है, जिधर उधर नहीं करनी। दूसरा मिसाल दिया कि देखो उन दिनों में तो आज कल मालूम नहीं है, घर का कचरा साफ करते थे ना आंगन का, रस्से पर दरवाजे के बाहर फेंक देते थे। तो कहा कि पड़ोसी वो कचरा अपने घर में नहीं लाएगा, ऐसे हरेक अपनी बुराई फेंकना चाहते, और जो देखता है, सोचता है, बात करता है, चिंतन करता है, तो क्या होगा, वो किचड़ा अंदर आ जाएगा। क्योंकि कई बार हम औरों की नकल करते हैं कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, और खुद ऐसा करने लग जाते हैं। तो मम्मा की जो मुरली होती थी, क्योंकि बम्बई में तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो सवेरे ही होती थी एक क्लास, और क्योंकि बम्बई में कोई थाना से, कोई मुलुंड से, कोई सायन से, कोई बोरीवली से, कोई मलाड से, दूर दूर से आते रहते थे, दिन में एक बार अफोर्ड कर सकते थे क्लास में आना। फिर सारा दिन मम्मा तो अपना मुरली अध्ययन, चिंतन, योग आदि आदि करती रहती थी, पर मम्मा का अमृत पेला का टाइम फिक्स 2:30 बजे उठना, 5 बजे तक योग करना। और बम्बई में सेंटर बड़ा नहीं था, तो रमेश भाई का घर नया था, खाली था, वहां मम्मा रही 9 मास। तो एक रात्रि रमेश भाई एक मिनिस्टर को मिलने ले आया, और वो जाते जाते 11:30-12 बज गए। मम्मा अपने नियम अनुसार 2:30 बजे उठी। रमेश भाई ने पूछा दूसरे दिन, मम्मा आप इतना देरी से सोई है और 2:30 बजे उठ गई। तो मम्मा ने जवाब दिया, यदि मैं मिनिस्टर की मुलाकात के लिए रात को जाग सकती हूँ, तो सवेरे तो हमारे मेरी पीयू के साथ अपॉइंटमेंट होती है, वो कैसे मैं मिस करूंगी। और मम्मा बाबा को हमेशा जी हजूर जी हाजिर, कोई भी काम कभी भी बोलता था बाबा, पूछती नहीं क्यों या क्या, कैसे कैसे ऐसे नहीं ऐसे करके। एक बार पांडव भवन से ग्रुप जा रहा था, बाबा अपनी ऑफिस में खड़ा रहकर गोसुन कम सुन टोली देता था। अचानक सोचा इनको गरम गरम हलवा देना चाहिए, तो मम्मा को कहा, मम्मा गरम गरम हलवा बना के लाओ। तो साथ में मनोहर दादी थी, कहती थी ये ग्रुप तो जा रहा है और बाबा कहता है हलवा बनाओ, कैसे होगा। पर मम्मा गई, बना के लाई, और बाबा ने एक भाई को साइकिल पर भेजा बस स्टॉप। उन दिनों में हम पैदल जाते थे पांडव भवन से बस स्टॉप, पिछले रास्ते से शॉर्टकट, और हमारा सामान बैलगाड़ी में जाता था, और बस पर चढ़ाना होता है तो वो लोग निकले, उसके पहले गरम गरम हलवा मिल गया। शुरू में यज्ञ में साक्षात्कार का पाठ बहुत चलता था, तो क्या हुआ कि एक रात संदेशी ने लक्ष्मी नारायण की शादी की सीन देखी कैसे होता है क्या करता है। तो वो सीन जो देखती थी संदेशी, और दूसरे दिन ड्रामा करते थे। अभी रात को 9 बजे संदेशी ने संदेश दिया कि कल सवेरे 9 बजे ये ड्रामा परफॉर्म करना है। मामा ने मम्मा को बुलाया, मम्मा दोनों की ड्रेस तैयार चाहिए, दोनों के गहने तैयार चाहिए। उन दिनों में कोई शॉप्स नहीं होती थी जहां से हम हायर करें। तो मम्मा ने 8-10 बहनों को इकट्ठा किया, किसी ने कपड़े सिलाई किए, किसी ने गहने तैयार किए, और सवेरे 9 बजे के पहले तैयार करके दिया। और मम्मा मुरली की बहुत लगन थी। तो जब 9 मास बंबई में रही तो यहां से क्या करते थे ब्रह्मा बाबा, वो जो मुरली चलाते थे ना, उनकी शॉर्ट में नोट्स लेती थी यशोदा देवी, और फिर वो नोट्स शाम को स्टेशन पर पहुंचानी होती, फास्ट पोस्ट वैसे जाती थी। तो स्टेशन पर नीचे ट्रेन के टाइम पर पहुंचाने से दूसरे दिन बंबई पहुंचाती थी, और घर में 10-11 तक पहुंचाती। तो मम्मा पहले वो पढ़ती थी, फिर लिथो मुरली आती थी, और लिथो मुरली 10-15 दिन लग जाता था, लिथो करे पोस्ट करे 10-15 दिन वो पढ़ती थी। फिर उन दिनों में फोर्सफुल ग्राइंडिंग मशीन निकली थी, तो उसमें भी बाबा मुरली जो चलाते थे वो बम्बई भेजते थे। तो मम्मा 3-4 बार मुरली पढ़ती थी। और मम्मा योगन थी, और कईयों को मम्मा से लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था, जैसे ब्रह्मा से कृष्ण का था। और मम्मा को मालूम था कि मैं लक्ष्मी बनने वाली हूं, पर पुरुषार्थ में जरा भी हल्की नहीं हूं। और मम्मा को बाबा इधर उधर भेजता रहता था। तो अमृतसर में मम्मा को भेजा था, बहुत हंगामा हुआ था, बांधेली कुमारियां और भाई वगैरह उसके परिवार वालों ने। एक दिन सवेरे जब मम्मा वहां थी 7 बजे में सेंटर खटखटाया, तो सेंटर खटखटाया तो देखा कि 100 का झुंड आ गया है। और बाबा को मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं, तो जगदीश भाई को दिल्ली से भेजा था कि जाओ आप हेल्प करना। तो जगदीश भाई गए नीचे। जगदीश भाई ने उनको कहा अभी तो मुरली का टाइम है, आप लोग मुरली के बाद मिलना मम्मा से, नहीं अभी खोलो, अभी ही हमको मिलना है, नहीं तो बीच में मम्मा भाग जाए। तो फिर जगदीश भाई ने कहा ठीक है, आप में से 5-7 जने आओ हमारे साथ। सबको ऊपर ले गया मम्मा के पास। मम्मा उस समय योग में बैठी थी शांति से, वो लोग भी जाम सामने आकर बैठ गए मेडिटेशन में। 5-7 मिनट हुई, कुछ कोई नहीं बोला। फिर मम्मा ने कहा, आओ बच्चे, क्यों आए हो? नहीं नहीं मम्मा, कुछ नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर नीचे जाकर कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसी है, इनकी मम्मा तो देवी है। तो जो भी मम्मा के भगत होते थे, जहां मम्मा जाती थी उनको मम्मा से साक्षात्कार होता था, सरस्वती का, लक्ष्मी का, या जो भी जिस देवी का भगत होता था। तो साक्षात्कार मुहूर्त विद्या देवी और शेरनी शक्ति थे। कोर्ट में केस हुआ, जरा भी जज के साम अट से मत ना हुई, क्योंकि प्रॉमिस लेना होता है, मैं जो भी देख बोलूंगी भगवान को सामने रखकर सच बोलूंगी, पूरा सच बोलूंगी और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी, ये प्रॉमिस लेना होगा। वो कहते मैं भगवान को सामने देखती नहीं हूं, मैं कैसे ये प्रॉमिस ले सकती हूं? फिर जज को छुट्टी देनी पड़ी। तो यज्ञ में तो आप जानते हो कितना सामना करना पड़ा, पर मम्मा बाबा बिल्कुल निश्चिंत, कराने वाला वो बैठा, वो कराएंगा। तो मम्मा बंबई में भी थी तो बीमार थी, पर कभी चूचा नहीं, क्योंकि कैंसर फैल गया था फेफड़ों के आसपास, तो सांस लेने में तकलीफ होती थी। पर लास्ट दिन भी जब छुट्टी ली मुंबई से, किसी को मालूम नहीं था कि मम्मा इतने बीमार है, सीरियस है। जो टोली लेने वाले होते सामने से आते थे, मां ठीक दृष्टि दे, वापस जाते थे, फिर मम्मा दीप सांस लेते थे। अंत में भी 24 जून को मम्मा ने, उस समय 12 बजे भोग लगता था, बाबा अमृत पिलाते थे और मम्मा भोग देती थी, उस दिन भी अपने कमरे में खटिया में बैठकर भोग दिया। किसी को फील नहीं हुआ कि मम्मा आज जाएंगी। और 4 बजे के करीब शरीर छोड़ा, तो किसी के भोजन में भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। और दादाराम और सावित्री दादी जो लखनऊ के थे, जिन्होंने हांगकांग सेंटर भी शुरू किया, और उसका परिवार सारा ज्ञान में है, उन्होंने 24 जून यहां से छुट्टी ली। लखनऊ पहुंचे, समाचार मिला मम्मा ने शरीर छोड़ा, फिर उसी दिन वापस निकल गए। तो इस रीत से मम्मा ने थोड़े ही वर्षों में, क्योंकि 14 साल के ज्ञान में आई थी, 44 साल को शरीर छोड़ा, तो 30 साल करीब ज्ञान में थी, पर इतनी कमाई की, गांव गांव में जाकर सेवा की, जो नंबर 1 बन गया। ओम शांति।